प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया
प्रिय श्रोता मित्र, आपका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। हम उन श्रोता मित्रों को बता दें जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। श्रोता, हम इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन की रूपरेखा सीख रहे हैं, जिसमें अब तक हमने देखा है कि बाइबल क्या है, हम कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर की ओर से है, और इसके अंतर्गत हमने 5 मुख्य कारणों को देखा था। पहला था बाइबल का सुरक्षित होना, दूसरा पुरातत्व विभाग का प्रमाण, तीसरा पूर्ण हो चुकी भविष्यवाणियां, चौथा परिवर्तित जीवन, और पांचवा परमेश्वर का आत्मा इसे वास्तविक बनाता है। इसके पश्चात हमने पिछले दो कार्यक्रम में देखा कि प्रकाशन क्या है और ईश्वर प्रेरणा क्या है। आज हम इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि स्पष्टीकरण या प्रकाश डालना क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के लिखे जाने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रकाशन, ईश्वरीय प्रेरणा और वचन के स्पष्टीकरण या उस पर प्रकाश डालना अनिवार्य है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझ व सीख सकें। तो इससे पहले कि हम आज के विशेष अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगें और प्रार्थना करें, ताकि इस अध्ययन में हम जो कुछ भी सीखें हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन दूर रहकर भी एक साथ कर सकते हैं। पिताजी, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सब श्रोताओं को अपने वचन को समझने के लिए अपनी बुद्धि, ज्ञान व समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो यह हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक और आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण ठहरे। हम उन श्रोता मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराश व चिंतित हैं। प्रभु जी, आप उन्हें शांति प्रदान करें और आज के इस कार्यक्रम के द्वारा उनके जीवन में एक नई आशा दें और हम सबको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय श्रोता, आज हम स्पष्टीकरण या प्रकाश डालना पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लें कि स्पष्टीकरण क्या है। इसका अर्थ इस प्रकार से है, जबकि आपके पास और मेरे पास बाइबल है जो ईश्वरीय और मानवीय पुस्तक है, यह पुस्तक मनुष्यों के द्वारा लिखी गई जो अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय वे परमेश्वर के वचन को भी लिख रहे थे और इसे हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है या इस वचन पर प्रकाश डालकर समझा सकता है। यद्यपि हम बाइबल के उन सच्चाइयों या घटनाओं को अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय तथा मस्तिष्क को खोलता है, ताकि हम उस आत्मिक सच्चाई को जो परमेश्वर के वचन में है समझ सकें। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि पवित्र आत्मा हमें वचन का स्पष्टीकरण या प्रकाश नहीं देता है तो हम इसे अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते जैसा हमें समझना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक होना अनिवार्य है। प्रिय मित्र, प्रकाश से सत्य की पहचान होती है और इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है। यदि पवित्र आत्मा से वचन का प्रकाश ना हो तो अविश्वासियों की आत्मिक आंखें नहीं खुल सकती। पौलुस ने साफ साफ लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, न वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और इन बातों को हम पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 2:14 में पाते हैं। पौलुस ने कुरिन्थवासियों को लिखते हुए कहा, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 2:7-9 में पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:7-9 में, परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में किसी ने न समझा। यदि वे समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी वस्तु की जानकारी हमें ज्यादातर देने व सुनने के द्वारा और कुछ कारणों का पता लगाने के द्वारा होता है। और यहां पर पौलुस हमें बताते हैं कि कुछ बातें हैं जिसे हमारी आंखों ने नहीं देखा है और न कानों ने सुना है, और ऐसे चीजों तक अपने मस्तिष्क के द्वारा पहुंचना भी असंभव है, तब आप इस संसार में उन्हें कैसे जान सकेंगे। परंतु परमेश्वर ने इसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 10 पद में पौलुस लिखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहां तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। पवित्र आत्मा पवित्र बाइबल की वचनों पर प्रकाश डालता है, जिसके द्वारा हम सरलता से वचन को समझ लेते हैं, अन्यथा हमारे लिए वचन को समझना कठिन होता। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 9 पद कभी कभी दफन हो जाते हैं। एक सेवक इस बात को लागू करते हुए कहता है कि जो मर गया वह इस बात को नहीं जानता, परंतु अब वह उसे जानेगा जिसे वह पहले नहीं जानता था। और संभवतः यह सत्य है, क्योंकि हम स्वर्ग के बारे में कुछ सीखेंगे या शिक्षा प्राप्त करेंगे, परंतु पद 9 के कहने का वास्तविक अर्थ यह नहीं है। इससे पहले कि हम अंत्येष्टि प्रबंध के हाथ में जाएं, दुनिया में ऐसी बहुत सी वस्तुएं या चीजें हैं जिसे न आप और न ही मैं प्राकृतिक सुविधाओं के माध्यम से जान सकते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक होना अनिवार्य है। प्रिय श्रोता, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु एक बार अपने शिष्यों से अपने बारे में एक प्रश्न पूछ रहे थे। उसने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि आपको कोई कुछ और दूसरा कुछ कहता है। जी हाँ, यदि आज यही प्रश्न लोगों से किया जाए तो हमें बहुत से उत्तर विभिन्न विचारों के साथ मिलेंगे। यीशु ने शिष्यों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और शमौन पत्रस ने उत्तर देकर कहा, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मत्तीरचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम इन बातों को पाते हैं। जी हाँ, यह परमेश्वर ही है जिसने शमौन पत्रस पर सत्यता को प्रकट किया। इसलिए आज भी परमेश्वर के वचन को सिर्फ परमेश्वर ही स्पष्ट कर सकता है, ताकि हम उसे समझ सकें। वह पवित्र वचन को वास्तविक बनाने के लिए उस पर प्रकाश देता है, अर्थात वह हमारे लिए वचन को स्पष्ट करता है। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद उसी दिन यरूशलेम से इम्माउस जा रहे 2 व्यक्तियों के साथ रास्ते में उनसे मिल गए, जो बातचीत करते हुए इम्माउस जा रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम चलते हुए आपस में ये सब क्या बातें कर रहे हो? और वे उदास होकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने, जिसका नाम किलियोपास था, उसे उत्तर दिया, क्या तू ही अकेला ऐसा व्यक्ति यरूशलेम में आया हुआ है कि इन सब बातों से जो इन दिनों यहां हुई है अनजान है? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थ्य नबी था, और हमारे मुख्य याजकों और अधिकारियों ने उसे किस प्रकार पकड़वा कर मृत्यु दंड के योग्य ठहराया और उसे क्रूस पर चढ़ाया। ये बातें हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 17 से 20 पद में पाते हैं। शायद आपको याद होगा कि यीशु पहले ही अपनी मृत्यु के बारे में बता चुके थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, और यह रुचिदायक बात है कि कई वर्षों पहले लिखी गई भविष्यवाणी जो वर्षों से बातें कर रही है, और अपने लिखित वचन के द्वारा उन दोनों व्यक्तियों ने जो इमाउस को जा रहे थे अपनी आशा को व्यक्त किया जो वे यीशु पर रखते थे, और कहा, परंतु हम तो यह आशा कर रहे थे कि वही इसराइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति है। वास्तव में इन सब बातों की अपेक्षा इन घटनाओं को घटित हुए आज 3रा दिन हो चुका है, और इस घटना को हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और इसके 21 पद में पाते हैं। और वे यीशु को वे सब बातों को बताते रहे जिसे वे जानते थे। उन्होंने उससे यह भी बताया, जो हमारे साथ थे उनमें से कुछ कब्र पर गए और इस बात को जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उन्होंने उसे अर्थात यीशु को नहीं देखा। इसे हम लुकारचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 24 पद में पाते हैं। उनकी आशा धुंधली धीमी पड़ गई थी और उनके हृदय में अंधेरे ने प्रवेश कर लिया था। प्रिय मित्र, अब ध्यान से सुने कि यीशु ने उनसे क्या कहा। लुकारचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 25 से 27 पद में। लुकारचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 25 से 27 पद में। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों, क्या मसीह के लिए आवश्यक ना था कि यह सब कुछ दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मित्र, क्या आपको नहीं लगता कि काश आप उस वक्त यीशु के साथ होते और उनकी बातों को सुनते जो उनके स्वयं के बारे में पुराने नियम की पुस्तकों में लिखा है, एक एक कर आपके सामने रखते। उन्होंने ऐसा ही किया कि पुराने नियम की पुस्तकों में जहां भी उनके बारे में लिखा था प्रकट कर दिया। इतना ही नहीं, यीशु ने अंततः अपने आप को संध्या की भोजन के समय उन पर प्रकट कर दिया कि वह कौन है। इस पर उन दोनों ने कहा, जिसे हम लुकारचित सुसमाचार 24 अध्याय के 32 पद में पाते हैं, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे? इनके वार्तालाप से यह पता चलता है कि ये दोनों राहगीर यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को लेकर उलझे हुए थे, लेकिन यीशु ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। श्रोता, हम ऐसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो अन्य पुस्तकों से भिन्न है। मैं न केवल यह विश्वास करता हूं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है, वरन मेरा विश्वास यह भी है कि यह मनुष्य के लिए एक बंद पुस्तक है। जब तक कि पवित्र आत्मा आपके हृदय को न खोले और वास्तविक न बना दे, अर्थात पवित्र वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता का होना जरूरी है। अपने पुनरुत्थान के पश्चात जब प्रभु यीशु यरूशलेम वापस आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी और कहा, जिसे हम लुकारचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 44 पद में पाते हैं, और जहां पर लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना अनिवार्य है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु ने यह विश्वास किया कि प्रभु के सेवक मूसा ने पंच ग्रंथ अर्थात पेंटाट्यूक को लिखा। उनका यह भी विश्वास था कि नबियों ने उनके विषय में भविष्यवाणी की और भजन संहिता भी उनकी ही ओर संकेत करता है। अब यहां पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाइबल पद है, लुकारचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 45 पद, जहां पर लिखा है, उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझें। प्रिय मित्र, इस पद के अनुसार यह स्पष्ट है कि यदि परमेश्वर आपकी समझ को न खोले तो आप परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं समझेंगे। और यही कारण है कि जब हम इस पुस्तक के समीप आए तो अपने मस्तिष्क की नम्रता के साथ आए और अपनी सब उच्च शिक्षा और सांसारिक ज्ञान को एक ओर रख दें, अर्थात हमें अपने बौद्धिक स्तर को भूलकर इस पुस्तक के समीप आना चाहिए। आइए हम पुनः पहले कुरिन्थियों की पत्री में वापस जाएं, जहां पर पौलुस के कथन को देखें, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहते हैं, उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। यही कारण है कि जब कभी कोई नामधारी मसीही भाई या बहन आते हैं और कभी कभी प्रचारक भी आते हैं और कहते हैं कि वे अब इस बात पर विश्वास नहीं करते कि बाइबिल परमेश्वर का वचन है, तो यह सुनकर मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पौलुस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर की बातें समझना शारीरिक व्यक्ति के क्षेत्र की बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मिक व्यक्ति के क्षेत्र का विषय है। इसलिए एक शारीरिक व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। मार्क ट्वाइन ने, जो एक मसीही विश्वासी नहीं था, उसका कहना था कि पवित्र बाइबल की जो बातें मेरी समझ में नहीं आती उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, किंतु मैं उन बातों की चिंता करता हूँ जिसे मैं समझता हूँ या मेरी समझ में आती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे एक अविश्वासी या गैर मसीही भी समझ लेता है, और उन्हीं बातों के कारण कई लोग परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते या स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विषय में पास्कल ने इस प्रकार कहा है, मानवीय ज्ञान को समझना जरूरी है ताकि उसे प्यार किया जाए, परंतु ईश्वरीय ज्ञान को प्यार करना जरूरी है ताकि उसे समझा जा सके। प्रिय मित्र, अब तक हम स्पष्टीकरण या प्रकाश के विषय में विचार करते आए हैं, लेकिन अब मैं इस विषय को छोड़कर अगले विषय की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके पूर्व मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। केवल परमेश्वर का आत्मा आपके मन और हृदय को खोल सकता है कि वे देखें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि वे उस पर विश्वास करें कि वह उनका उद्धारकर्ता है। और वास्तव में यह एक अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं प्रभु के वचन को बांटने के लिए कलीसिया में खड़ा हुआ, मैं अपने आप को असहाय महसूस किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जितना भी अच्छा वचन बोलूँ, मैं किसी के जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं अपने आप को न केवल असहाय परंतु कमजोर और दुर्बल भी महसूस कर रहा था, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ मैं सामर्थ्य भी था। यह मेरा सामर्थ्य नहीं, परंतु मैं जानता था कि जो वचन मैं बोल रहा हूँ वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित और वास्तविक बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय मित्र, पापी के उद्धार के हेतु परमेश्वर के वचन का प्रकाश अनिवार्य है, जिसे हम भजन संहिता 119 और उसके 130 पद में देख सकते हैं। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यही वचन का प्रकाश प्रत्येक विश्वासियों की चाल के लिए अनिवार्य है, और हम आगे भजन संहिता उसके 119 अध्याय और उसके 105 पद में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रिय मित्र, वचन के प्रकाश के द्वारा बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य होते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसके 28 पद में परमेश्वर का सेवक अपोलुस आत्मा से भरकर वचन सुनाता था, जिसके बारे में लेखक इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि उसने पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, प्रबलता के साथ यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। जी हाँ, जब वचन का प्रकाश परमेश्वर देता है तो उसे आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को भी सही शिक्षा दे सकते हैं। जिस प्रकार अपोलुस पवित्र शास्त्र का प्रमाण देकर लोगों को सही शिक्षा दे रहा था कि यीशु ही मसीह है, पौलुस भी अपने ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि वह एक विद्वान व्यक्ति में से था, फिर भी उसने अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया, क्योंकि वह इस बात को भली प्रकार से जानता था कि केवल वचन के प्रकाश के फलस्वरूप ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम पुस्तक का लेखक प्रेरित उसका 17:2-3 में लिखता है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। और वह कहता था, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूं मसीह है। यहां पर पौलुस वचन के प्रकाश में होकर लोगों को प्रमाणित करके बताया कि यीशु ही मसीह है। यह सब कुछ तभी संभव होता है जब पवित्र आत्मा वचन में प्रकाश या स्पष्टीकरण देने के द्वारा इसे वास्तविक बनाता है, तब यह और भी प्रभावशाली हो जाता है, अन्यथा हमें पवित्र वचन को समझने में कठिनाई महसूस होती है। और यही कारण है कि लोग आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं परंतु समझते नहीं, क्योंकि वे पवित्र आत्मा का प्रकाश वचन के प्रति नहीं मांगते, इसलिए उन्हें कई बार निराश होना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा वचन का प्रकाश या स्पष्टीकरण दे, ताकि आप परमेश्वर के उन महान योजनाओं को अपने जीवन में समझ सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सब श्रोता भाई बहनों को वचन का प्रकाश दे कि आप सब उसके महान आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्र, आज के इस अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में हम एक नए विषय के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, प्रभु आप सबको अपने आशीषों से परिपूर्ण करें और आपकी सहायता करें। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
शालोम इंटरनेशनल गॉस्पेल म्यूजिक मिनिस्ट्री आभार मानता है प्रभु यीशु का, जो हम आपके सामने ये पुकार वॉल्यूम 8 को सीडी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका श्रेय मात्र उस महान प्रभु यीशु मसीह को जाता है, जो इस जग के तारनहार है। आमीन।